अर्पित करता हूं। मैंने सोचा कि हम लोग यहां पर 8 बजे 8:30 बजे आ जाएंगे, ठीक नहीं बोलता। हमने सोचा था हम लोग 8 बजे के करीब यहां आ जाएंगे, फिर सुना जी यहां पर गो पूजा इत्यादि होगी, इसलिए 8:30 बजे 8:45 बजे जाना ही अच्छा है। मैं तुम्हें जानता जी पहले हो जाएगी गो पूजा इत्यादि, तो मैं गो पूजा के समय भी उपस्थित रह करके गो पूजा भी करता और हरि कथा भी हो जाती, किंतु कुछ भूल हो जाने के वजह से आज मेरे विलंब हो गया आने में। रात में अधिक रात तक मैं नहीं बोल सकता, उसके लिए हमको मना है, इसलिए संक्षेप में कुछ बातें आप लोगों को बतला रहा हूं। वैसे तो कल हमने कृष्ण की लीला, ये बहुत ही सुंदर लीला है, उसका मैंने आरंभ किया था। आज थोड़े से मैं हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ने हमसे कहा था संक्रांति के संबंध में थोड़ा सा कुछ बतलाने के लिए, इसलिए संक्रांति के संबंध में कुछ बतला करके तब फिर आगे बढ़ूंगा। संक्रांति मैंने होता है पृथ्वी में कुछ रेखाएं हैं और जब सूर्य उस पर इधर उधर जाता है चलता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के भूमध्य में एकदम बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके बाद में कर्क रेखा है, इसके बाद में मकर रेखा है, ऐसी सब रेखाएं हैं। सूर्य उस तरफ में, पृथ्वी के उस तरफ में मकर और इधर में भी मकर, दोनों के बीच ही में रहता है, पार करके उधर नहीं जाता। अभी सूर्य पृथ्वी के इक्वेटर से अभी दक्षिण की ओर में है और अपनी अंतिम पोजीशन तक वहां पर पहुंचे हैं, अब इसे आगे नहीं बढ़ सकते। भारतवर्ष के लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि सूर्य अब दक्षिणायन उत्तरायण से अब दक्षिणायन में बढ़ रहे हैं। जीवन के लिए लाइट की, सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। यहां पर सूर्य की लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, वहां पर जीवन बड़ा भारी कठिन होता है। जैसे उधर में स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद में उधर में और भी ग्रीनलैंड, यहां पर 6-6 महीने की रातें होती हैं, 6 महीने से भी अधिक की रातें होती हैं, बड़ा कठिन जीवन होता है, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। इधर भी साउथ पोल की तरफ में, ध्रुव की तरफ में ऐसा ही होता है। इसलिए सूर्य जीवन है, जीवन प्रदान करता है, जीवनी शक्ति देता है। इसलिए विशेष करके भारत के ऋषियों ने, महर्षियों ने इसका आविष्कार किया इस तथ्य को। इसलिए जब सूरज इसको पार करके भूमध्य रेखा को और कर्क रेखा को पार करके जब इधर में आता है और अंतिम अवस्था से जब फिर पीछे भारत की ओर में उधर में मुड़ता है तब उसको कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन में मरना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण में मरे नहीं, दक्षिणायन के लिए प्रतीक्षा करते रहे। जब दक्षिणायन सूर्य उधर की तरफ में मुड़ा तब उन्होंने अब शरीर को छोड़ा। उत्तरायण में मरने से सदगति, कर्मी लोगों की सदगति में कुछ गड़बड़ी होती है, भक्तों के लिए ये सब चीजें नहीं है। तो इसलिए मकर संक्रांति जब सूर्य मकर रेखा से पार करके जब इधर में आता है और भारत इत्यादि के तरफ में दिन बड़ा होने लगता है, आरंभ होता है, तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन में स्नान का बड़ा महत्व वहां है। चाहे 1000 ठंडा पड़ रहा हो, लोग गंगा जमुना की संगम पर समुद्र में, गंगा के घाटों पर, जमुना के घाटों में, गोदावरी के घाटों में, विशेष करके बंगाल के सागर में, महासागर में, यहाँ पर गंगा नदी समुद्र में मिलती है, वहां करोड़ों लोग जाते हैं। अभी कुंभ में पंडित जी ने बतलाया होगा, कुंभ में कितने करोड़ आदमी वहां पर उपस्थित हैं। सुनते हैं कि इस बार और भी अधिक आदमी आएंगे और वहां पर 70 लाख से 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ों लोग,
7 करोड़
लोगों की वहां पर भीड़ है अभी। और आज स्नान किए होंगे शुभ मुहूर्त में, जिस समय मकर संक्रांति लगी होगी, एक तिथि है उसमें, तो उसमें स्नान किए होंगे। उस स्नान का बहुत महत्व है, लोग समझें न समझें, किंतु है बहुत महत्व। इसलिए उस दिन में धनी राजा भी नदियों के किनारे स्नान करके और अपना सर्वस्व दान कर देते थे। एक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में, जबकि वह पूर्ण ग्रास हो, और एक इस समय में। बड़े बड़े राजा लोग, महाराजा लोग, जैसे पांडव लोग, युधिष्ठिर इत्यादि लोग, और भी हमारे इतिहास में ऐसा मिलता है कि हर्षवर्धन अभी कुछ दिन पहले 1500-1600 या और भी करीब 1000-1500 वर्ष पहले हर्षवर्धन थे, वो भी जाते और अपना सर्वस्व वहां पर स्नान करके सबको दान कर देते, और किसी प्रकार से लंगोटी पहन करके वहां से निकलते, और फिर एक वर्ष के अंदर में जो कुछ होता है, या जब जब वो ये संक्रांति का समय होता है, दान करते थे। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व, सोना टोना जितना था, स्वर्ण, सब कुछ को दान कर दिया, और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे जैसा तो जगत में बहुत ही कम दानी आदमी होंगे। जब हस्तिनापुर में जब आए इंद्रप्रस्थ में, रात में सो रहे थे, कुछ बगले आकाश में जा रहे थे उड़ते हुए, हंस, राज हंस जा रहे थे। उन लोगों में एक ने कहा, हंस ने, वाह, महाराज युधिष्ठिर के समान और कोई दानी नहीं है, और संक्रांति के दिवस में उन्होंने सर्वस्व अपना दान कर दिया और लंगोटी पहन करके लौटे हैं, उनके पास में कोई सोना अब रह नहीं गया है, कपड़े लत्ते तक भी दान कर दिया है। एक दूसरा राजहंस बोला, उत्तर दिया, बेकार की बात मत करो, इन्होंने कुछ भी दान नहीं किया। उसी प्रयाग में एक महात्मा है, उनका नाम मुद्गल है, रैक के मुनि है, गाड़ी के नीचे रहते हैं, बैलगाड़ी के नीचे, उनका कोई अपना कुछ नहीं है, और वे अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं? जीवन का निर्वाह करते हैं, जब लोगों की खेती कट जाती है तो उसमें कुछ दाने गिर जाते हैं, उन दानों को इकट्ठा करके और सत्तू उसे बना करके, और जो सामने आया उसको खिला करके जो कुछ बच जाता है वही रखते हैं, बाकी सब दे देते हैं। अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, मैं कृष्ण रैक्य मुनि को देखना चाहता हूं और कैसे क्या करते हैं मैं सोचना देखना चाहता हूं। ले गए, उनको दिखलाया, कुछ भी उनके पास नहीं। एक व्यक्ति है, उसने, उसके पास में करोड़ों रुपए थे, उसमें से 1 लाख रुपया किसी को दान कर दिया, और जिसके पास में कुछ नहीं है, आज खाने के लिए भी नहीं है, और उसने किसी तरह से सदुपाय से थोड़ा सा इकट्ठा किया और उसको भी अपने खाना नहीं खा करके दूसरों को दान कर दिया, दोनों में कौन बड़ा दानी है? कौन बड़ा दानी? समझ रहे हैं मेरे कथन का? वही दानी है जिसके पास कुछ नहीं है और किसी प्रकार से अपनी जीवन निर्वाह के लिए कुछ लिया और उसमें से वो भी दान कर दिया, वो बड़ा दानी है। कृष्ण ने अर्जुन उनको, युधिष्ठिर को समझाया, रैक मुनि के चरणों में गिर गए। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दानी लोग थे जिनके दान की तुलना नहीं हो सकती। हरिश्चंद्र को आप लोग जानते हैं, शिवी, दधीची इत्यादि बड़े बड़े दानी लोग थे। किंतु एक और बात है, हनुमान जी ने कोई दान किया कि नहीं? कुछ, शिवी की भांति कुछ दान किया कि नहीं? तो हनुमान जी बड़े हैं, न दधीची और हरिश्चंद्र और ये लोग बड़े हैं, इस चीज को समझना है। एक पिता हैं, अपने बच्चों का जन्म दिया, पाल पोषण किया और अपना सब कुछ बेटे को संभला दिया और खुद बूढ़े हैं अब। और बेटा बाजार जाता है और वहां से एक अच्छा कपड़ा लाता है, धोती चादर या कमीज लाता है और कुछ खाने पीने की चीज लाता है और अपने पिताजी को वो देता है। वो पिताजी को दान करेगा ना उसके द्वारा सेवा करेगा, इस चीज को समझिए। पिताजी को दान करेगा, ये पिताजी मैंने ये कपड़े लत्ते ये आपके वो मैं दान कर रहा हूं, आप दान लीजिए हमसे, ये गलत है। उसका तो कुछ नहीं है, उसके पिताजी का ही दिया हुआ है, इसलिए उन्हीं की चीज से गंगा के जल से गंगा जी की पूजा होती है। ऐसे ही पिताजी की संपत्ति से पिताजी की सेवा करो, उनको दान मत दो। तो विश्व में तुम्हारा है क्या, क्या लेकर के तू आया? ये शरीर भी तुम्हारा है, तुम भगवान को या किसी दूसरों को क्या दान कर सकता है? तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं है, तुम कोई भी दान करने के लिए योग्य नहीं। ये सब प्रभु ने कुछ आपको दिया है, इनसे प्रभु की सेवा करो और उनके सेवकों की सेवा करो हनुमान की भांति। हनुमान तत्व को जानते हैं, इसलिए भगवान को उनको दान करने की कोई जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर के सारा जीवन कैसे सेवा करते हैं वो, ऐसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। इसलिए दजी दान दोगे तो दान लेने के लिए फिर तुम्हारा जन्म होगा और फिर तुम्हारा जन्म ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए दान न दे करके भगवान के ये सभी जीव सेवक हैं, मैं उनकी सेवा के लिए कर रहा हूं, इस भावना से करिए। अपनी स्त्री को भगवान की सेविका समझिए, अपने बेटे को भगवान के सेवक समझिए और इस तरह से उनका पालन पोषण करिए। यही कर्म की कुशलता है, यही बुद्धिमत्ता है, अन्यथा संसार के चक्र में पड़ जाएंगे। एक बात और समझने की है, भगवान कहें जे आपको हम मुक्ति दे रहे हैं, हनुमान जी कहें जे मुक्ति अपने पास रखिए, हमको मुक्ति की जरूरत नहीं है। भगवान अभी हम लोगों से भी कहें, हम लोगों में से किसी में से भी पंडित जी को, शायद पंडित जी तो जरूर ले लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे मुक्ति, कहिए अपने पास रखो, हम आपकी सेवा चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं। मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति एक एब्सर्ड चीज है, एब्सर्ड बने एक मिथ्या चीज है, मुक्ति कुछ नहीं है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति ही तू अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। अभी माया ने हमें पकड़ रखा है, इस माया से मुक्त होकर के जब शुद्ध रूप में अपने स्वरूप से भगवान की सेवा में चले जाएंगे, ये यथार्थ मुक्ति है। प्रहलाद महाराज जी ने और सब भक्तों ने भगवान ने कहा जी मुक्ति ले लो, उन्हें जी मुक्ति हमको जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, किसी ने आपका गला दबाया बड़े जोर से, अब गला कंठ एकदम बंद हो गया, हवा नहीं ले रहे हैं, अब तो मरना है। किसी प्रकार से उसे जोर जबरदस्ती करके गला अपना छुड़ा लिया, ओह मैं बच गया, नहीं तो ये तो आज मार ही डालता। इसका नाम है मुक्ति। आपको मिला क्या, मिला क्या चीज? उसने तो छोड़ दिया, रोग से मुक्ति हो गई, माने क्या? रोग तो दूर हो गया, आपको मिला क्या? पीछे से जिस चीज ने आपको आक्रमण किया था वो हट गया। मुक्ति इसको कहते हैं जब भगवान की प्रेममयी सेवा मिले, आपको सुख मिले, ऐसा सुख सच्चिदानंदमय सुख मिले, वो भगवान की सेवा। ये अफर्मेटिव चीज है, मुक्ति एक निगेटिव चीज है, उसमें कुछ मिलने का नहीं। आपको जो दुख था वो दूर हो गया, किसी ने गला दबाया था उसको हटा दिया, आपको मिला क्या? इसी तरह से आप समझिए, हम भगवान के नित्य दास हैं, माया ने हमारे किसी दोष के कारण हमको पकड़ लिया, जैसे एक आदमी जेल में बंद था, जेल में छोड़ने का उद्देश्य क्या है, अब वो जेल में छूटने से अपने परिवारजनों के पास में जाएगा, उनसे मिलेगा और खाना पीना देखना सुनना सभी प्रकार के संबंध युक्त प्रेम उसमें उसको मिले, इसलिए मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति माने आतंतिक दुख निवृत्ति रे वो मुक्ति शंकराचार्य की, यह गलत है। हमारे वैष्णव ने रामानु मध्व विष्णु स्वामी निम्बादित्य इत्यादि व्यास देव सुखदेव गोस्वामी नारद जी ब्रह्मा जी ने इसको काटा है, ये मुक्ति हमको नहीं चाहिए। इसलिए संक्रांति के दिन में संतों के पास में जाकर के उनकी सेवा का सुयोग मिलता है, इस संक्रांति का लाभ उठाएंगे, आप कुछ दान करेंगे आपको बहुत आनंद होगा। एक आदमी भूखा है और आप भी भूखे हैं, अरंति देव का नाम सुने होंगे, भागवत में इसका वर्णन है, बहुत उनके बड़े भूखे हैं और उसी समय में कुछ उनको खाने के लिए मिल गया। इतने में एक बहेलिया दो कुत्तों के साथ में, महाराज मैं मर रहा हूं हमको कुछ भोजन दीजिए, तो उन्होंने आधा उसको दे दिया। इतने में जब वो चला गया तो फिर दूसरा कोई आ गया, अभी खाने बैठे हैं इतने में अब परिवार और बच्चे के साथ में है, जो खाना आरम्भ करते हैं कोई आ जाता है उसको फिर आधे का आधा का आधा दे, जब सब कुछ दे दिया पानी रह गया केवल, इतने में फिर एक कोई आया, मैं मर रहा हूं जल्दी से हमें बचाइए, तो रहा हुआ वो पानी भी दे दिए, किंतु उनके हृदय में कितना आनंद हुआ, इसने इसके देने में आनंद है। इसलिए अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान के चरणों में दे दीजिए, जैसे गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वेदों का शास्त्रों का सबका यही तात्पर्य है, सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में एकांतिक रूप से शरणागत हो जाओ, ये भक्ति का दरवाजा है, भक्ति नहीं है। अभी प्रेम भक्ति बहुत दूर है, अभी तो दरवाजे में प्रवेश किया और इसके बाद में फिर भक्ति होगी। भक्ति किसको कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इसको अच्छी तरह से समझेंगे, भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध भक्ति जब अपनी सारी इंद्रियों से, शरीर से, मन से, तन से, धन से, विद्या बुद्धि विवेक सब प्रकार से और अपनी भावनात्मा से, जो भावना है मन है और मन की जो भावना है इसके अतीत भी आपका जो कुछ है, सब कुछ से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब आप प्रस्तुत होंगे या करेंगे, और उस समय में कोई भी संसारी कामना न हो, कोई भी संसारी कामना, यहां तक स्वर्ग की कामना, मुक्ति की भी कामना न हो, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारी उसकी क्रियाएं हो और वह ज्ञान और कर्म इससे ढकी हुई न हो, तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। आपको जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए करें और उससे संसारी कोई भी इच्छा न हो, कृष्ण प्रसन्न हो, ये भक्ति है। और अपने लिए हमने देखा है कहीं कहीं जगहों पर मंदिरों में लोग जाते हैं और ठाकुर जी के मंदिर का चौखटा ऐसे दबाते हैं, किस लिए, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारा व्यापार चल नहीं रहा है जरा ठीक हो जाए, हे ठाकुर जी आपको पांच आने का बताशा चढ़ाएंगे। ये जो चढ़ाना है आपको, मैं हे गिरिराज गोवर्धन आपको दूध की धारा से परिक्रमा करूंगा, ये क्या चीज है। हे ठाकुर जी यदि हमारा ये रोग दूर हो गया, शंकर जी दूध का डेढ़ मन दूध से आपका अभिषेक करेंगे, तो ये तो उनको प्रलोभन देना हुआ, ये भक्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं है, इस चीज को समझिए। इसलिए अपने लिए जो कुछ करेंगे, भगवान का सेवा अर्चन पूजन करेंगे तो भी ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति की छाया है। जब सब कुछ पांडवों की तरफ, अर्जुन इत्यादि की तरफ और सबसे अधिक गोपियों की तरफ, ब्रजवासियों की तरफ, जब सब कुछ करते हैं भगवान के लिए ही, अपने लिए कुछ भी नहीं। गोपियां अपना श्रृंगार किस लिए करती हैं? हैं? श्रृंगार करना समझते हैं ना, किस लिए श्रृंगार करती हैं? ओ देख, कृष्ण को बड़ा आनंद होगा, प्रसन्न रहती हैं इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न रहेंगे। जो कुछ कृष्ण चाहते हैं वो करती हैं, इसलिए कृष्ण उनके ऋणी, इसको कहते हैं भक्ति। कल हमने इसी प्रसंग में बतलाया था, मैंने ये बतलाया कि कृष्ण घर में घुसे और घुस करके छीके के ऊपर में मक्खन रखा था, उसको खुद खाने लगे, बंदरों को और कौओं को भी। बंदरों को इसलिए देते हैं कि है बंदरों, तुमने सीता जी के लिए अपने प्राण दिए हमारी सेवा की, और उस समय मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, फल फूल इत्यादि कुछ नहीं, जहां तहां फल फूल पत्ते खा करके और हमारे लिए तुम लोगों ने प्राण दान किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इसलिए इस समय मैं तुम लोगों को मक्खन खिलाऊं। वो खिला रहे काकभूषुंडी जी के वंश के हैं ना कौए, इसलिए कौओं को खिला रहे थे, कौओं को इसीलिए खिला रहे। काकभूषुंडी जी परम भक्त थे, गरुड़ जी को भी कुछ मोह हुआ तो काकभूषुंडी ने वो मोह दूर कर दिया, ऐसे उच्च कोटि के। जब जसोदा मैया घर में घुसी, कृष्ण ने देखा कौए इधर उधर भागने लगे, बंदर भी, तो ही कृष्ण देखा अरे मैया तो आ गई झट, हाथ में बेंत है लठिया, और अभी तो मुझे मारेगी पकड़ करके, इसलिए ये पर ब्रह्म वहां से कूद करके भगे, अब भग करके राजमार्ग पर दौड़ने लगे। एक यहां पर बात है, शिक्षा है, कृष्ण से भी कृष्ण की कोई चीज हो भक्तों को अधिक प्यारी होती है। अपनी सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना उनके भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अथवा उनके भक्त भगवान के और कोई चीजों की सेवा है। भरत जी रामचंद्र जी की खड़ाऊ ले आकर के पूजा किया ने? और रामचंद्र जी का पत्नी माना, ये खड़ाऊ खड़ाऊ नहीं है, क्या है, स्वयं रामचंद्र जी हैं, ऐसा समझो, इसलिए उसकी पूजा से भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होते। इधर जसोदा जी, जसोदा के लिए मक्खन है कि मक्खन के लिए जसोदा कृष्ण है, इस चीज को समझिए। जसोदा जी मक्खन ले अपना दूध मंथन कर रही हैं, अपना दूध पिला रही हैं, और उनको जोर से बैठा दीजिए, बैठो, और कृष्ण बैठ गए, उनका कोई भी शक्ति काम नहीं किया, सारे विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले सारी शक्तियों से पूर्ण होने पर भी जसोदा के आगे उनकी एक नहीं चली, चुपचाप बैठ गए, रोने लगे। यहां पर कृष्ण को रुलाना भक्ति हुआ। दूसरी तरफ में देखो, चारुण मुष्टिक मथुरा में रंगेश्वर महादेव के सामने में ताल ठोक करके लड़ रहा है, कृष्ण को मार डालना चाहता है। आज कृष्ण को बहुत दिनों के बाद में योग्य आदमी मिला जो उनके साथ में कुश्ती कर रहा है, इसलिए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ताल ठोक करके उससे लड़ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह कृष्ण की प्रसन्नता भक्ति हुई नहीं हुई? इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करना ही यह भक्ति नहीं है। कृष्ण सुखी हो यह भावना हृदय में रहे। जो सोदा जी के द्वारा कृष्ण रो रहे हैं तभी इनकी यह क्रिया, यह भक्ति उत्तम भक्ति है। और चारुण मुष्टि के लड़ने से प्रसन्न हो रहे हैं किंतु ये उनको मार डालना चाहते हैं, कृष्ण के सुख लिए नहीं लड़ रहे, इस चीज को भावना करनी चाहिए। इसलिए अपनी चीज कृष्ण से मांगने के लिए जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं। गणेश जी के यहाँ उनके यहाँ दूध की धारा दे रहे हैं, हमारा बेटा अभी छोटा सा भी बच्चा पैदा हुआ है, हे प्रभु हमारे बच्चे को ठीक रखिए, तो ये क्या हुआ? जब शिव जी के लिए ही प्रसन्न करने के लिए ये शिव जी को यदि किया जाए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही जब उनकी सेवा हो तो इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, इसी तरह से उनका नाम हो। तो जसोदा जी कि जो भी क्रियाएं वो भक्ति की है, मरने के लिए जा रही हैं, दौड़ रही हैं, किस लिए? हमारा बेटा अंत में जो चोटा ना हो, बिगड़ ना जाए, आवारा ना बन जाए, इसलिए बच्चे को कृष्ण को भगवान नहीं मानती। ब्रज का कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। यदि भगवान मान करके सेवा करेंगे तो उनकी प्रसन्नता उतनी नहीं होगी। जैसे गोपियां जसोदा मैया कृष्ण नहीं मानती भगवान, और अपना बच्चा मान करके दुलार से बड़े प्रेम से उनको शासन भी करते हैं, यदि ब्रह्म भी है तो हम अपने बेटे को शासन करेंगे, ये झूठ क्यों बोलेगा, चोरी क्यों करेगा। इसलिए यह प्रेम बहुत ऊंचा है। यशोदा मैया उसके पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण को पकड़ना सहज नहीं है। ब्रह्मा शंकर और बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग अपने विशुद्ध मन से एकाग्र करके, जगत से हटा करके, निर्मल बना करके भी समाधि में भी उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर पाते, नहीं पकड़ पाएंगे। जरासंध काल जौन उनके पीछे भगा, नहीं पकड़ सका। अभी मान कृष्ण का ध्यान लगाइए, आपके ध्यान में नहीं आएगा, उसको पकड़ना सहज नहीं है। उसको तो वही पकड़ सकता है जो कृष्ण से भी अधिक तेज दौड़े। संसार में ऐसा कोई है जो कृष्ण के समान तेज दौड़ सके? कोई नहीं। तो फिर कौन पकड़ेगा? यशोदा जी उसको पीछा किया, आज इसको दंड दूंगी, कोई भी बचा नहीं सकता इसको, हमारे कोख से जन्म लिया है, और उसके पीछे दौड़ने लगी। यदि वो कृष्ण से अधिक नहीं दौड़ सकती तो उनको नहीं पकड़ सकती। इस चीज को थ्योरी को समझिए। इसलिए जब पकड़ लिया उनको तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण से अधिक दौड़ करके उनको पकड़ा। क्या तात्पर्य? इसमें रहस्य है। कृष्ण का हम लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, अपने परिकरों के प्रति प्रेम है। सबको बड़ा चाहते हैं। हम लोगों के लिए तड़फड़ा रहे हैं, ये कब ये संसार से मुक्त होकर के हमारा थोड़ा सा नाम कर दें, हमारे धाम में चले जाएं, संतों का संग करें और इनको फिर अपने पास में बुला लूं। बड़े दुखी हैं ये, कृष्ण बड़े दुखी इसके लिए हैं। तो उनका हमारे प्रति प्रेम है, यशोदा जी के प्रति भी मेरी मैया है उनका प्रेम है, और यशोदा जी का भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, वात्सल्य प्रेम कहलाता है। नहीं? दोनों में वजनदार कौन है? यदि बराबर है यशोदा का प्रेम और कृष्ण का प्रेम तो वो नहीं पकड़ सकती, सब समय दूरी रहेगी। यदि यशोदा जी का प्रेम कृष्ण के प्रेम से कम है तो ये कभी और भी नहीं पकड़ सकती। यशोदा का प्रेम अधिक होना चाहिए। यशोदा का प्रेम यथार्थ में कृष्ण का प्रेम से अधिक है। कृष्ण यशोदा को जो प्रेम करते हैं, यशोदा जी का जो प्रेम है और सेवा है, वो कृष्ण को आकर्षण करने वाला है। इसलिए यशोदा जी का पल्ला भारी है, इसलिए वो दौड़ी तेज से। कृष्ण के लाखों भक्त हैं, किंतु यशोदा के लिए कृष्ण के लिए अतिरिक्त बेटा कौन है? इसलिए उनका वात्सल्य ऐसा है, अद्भुत है, उनके समान और लोगों का वात्सल्य नहीं है। इसलिए अपने वात्सल्य प्रेम के वजह से कृष्ण के और भी वेग से दौड़ करके जो दौड़ रहे हैं, दौड़ करके और उनको पीछे से पकड़ लिया। कृष्ण तो रोने लगे, और हाथ में यशोदा जी एक हाथ से, बाएं हाथ से कृष्ण का दाहिना हाथ पकड़ लिया, छोटे से भी बच्चे नंगे, और हाथ में बेंत लेकर के कह रही हैं, मारूं चंचल बंदर बुद्धि धूर्त चोर। कहने लगी, अरे बतलाओ तो परम ब्रह्म को ऐसा कोई कहता है? नारायण को कोई कह सकता है ऐसा? नारायण को किसी का दिमाग नहीं है जो कह सके। नारायण के अंश के अंश और कला प्रथम पुरुषावतार कर्णाब्धशायी विष्णु, जिसके लाखों शीर यह है, जिनकी प्रतिदिन हमारे पंडित जी वंदना करते हैं सहस्र शीर्षा इत्यादि श्लोकों के द्वारा, ये कौन है? कृष्ण के अंश के अंश के कला के अंश के कला है। इनकी इनको यदि कोई सामने रहेगा, इनका कोई मैया बाप है?
कोई नहीं,
नारायण का कोई भी माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं, सभी देखेंगे और लाखों हाथों से जोड़ करके और उनकी वंदना करेंगे है? इनकी कोई लीला भी नहीं, बस शयन करते हैं भुजग शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि, बस वंदना कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, वो भी ध्यान में आए तो। और इधर में कृष्ण देखो जो सब भगवान का सार होते हुए भी यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ करके डंडा ले करके करे अभी अभी तुमको मारूं बंदर बुद्धि, और कृष्ण रो रहे हैं अरे तुमने ये मटकी क्यों तोड़ी, क्यों फोड़ी मटकी, मैया हमने नहीं फोड़ी, रोते हुए कह रहे हैं मैंने नहीं, तो कौन किया, मैया जब तुम दौड़ रही थी हमको छोड़ करके बैठा करके और बड़ी जोर से भगी, उसमें तुम्हारे पैरों में जो सोने की करडुल्ला अथवा होता है ना पैजी जैसा कोई, वो बड़ा ठोस, उसे लग गया और ठुकराते हैं वो टूट गया और उसमें से दही, मैं क्या करूं, अरे चोर तुम ठीक ठीक बोलो, मैया हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, वंश चोर तुम्हारे वंश में, नंद बाबा के वंश में नहीं तुम्हारी मैया के वंश में कोई चोर होगा, ये बड़ा बात हुनी हो गया तो जो जो कहती है बस, अरे तुमने बंदरों को मक्खन खिलाया, बंदरों को मक्खन किसने खिलाया, जो बंदरों को बनाया मैया, बात गलत है कि ठीक है, ठीक है ना, बंदरों को किसने मक्खन खिलाया, तो जिसने बंदरों को बुलाया बनाया, यशोदा जी को तो ये है नहीं, जैसे ये कृष्ण ही ने बंदरों को बनाया इसलिए ये खिला रहा है वो तो सोच रही ये मेरा ये लाला है छोटा सा बच्चा है, अच्छा जिसने बंदरों को बुलाया उसने खिलाया, इसलिए जो जो कुछ कहती हैं और उसका उत्तर देते हो आप फिर रोने लगते हैं, ऐसी लीला नारायण करेंगे ना, सहर्ष शीर्षा पुरुष करेंगे, या हृदय में अंगुष्ठ परिमाण से जो विष्णु है वो करेंगे, नारायण भी नहीं कर सकते ऐसी लीला, द्वारकाधीश कृष्ण भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कृष्ण का जो भजन नहीं करता वो दुर्भागा है। अरे जिनको मारने के लिए पूतना गई स्तन में कालकूट वेश भर करके, और कृष्ण ने उस वेश के कारण माता का वेश बना करके गोलोक में भेज दिया, ऐसा किसने कृपा की है, कोई नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कंगवा दयालु शरणम, ऐसा कृष्ण जैसा कौन दयालु है जो कृष्ण का भजन नहीं करके दूसरे देवताओं की उपासना करेगा मुक्ति के लिए, वो दुर्भागा है, दुर्भागा। ये कृष्ण सहज नहीं है भाई, मैं उनका भक्ति देने के लिए आया हूं, सहायता करने के लिए, आप इसको बहुत ऊंचा समझिए, किसी जगह नहीं ऐसा संभव है, गणेश भी नहीं दे सकते, शंकर भी नहीं दे सकते, शंकर जी देंगे कब, जब वो शंकर जी अपना यह रूप छोड़ करके गोपी का वेश बना करके वृंदावन में रहेंगे तब दे सकते हैं। ये हनुमान जी हैं कौन, रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए हनुमान का रूप शंकर जी ने धारण किया है, इतनी बड़ी चीज है, ये हनुमान जी वृंदावन में प्रवेश नहीं करते, और शंकर जी भी अपने शंकर रूप में बैल में चढ़ करके और गले में मुंडमाला पहन करके त्रिशूल लेकर के बैल पर चढ़ करके वहां वृंदावन में नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, हनुमान जी यदि जाएंगे और देखेंगे जब यशोदा मैया उनका कान उमेठ रही हैं, तो शंकर जी हनुमान जी को क्रोध हो जाएगा, तो प्रलय मचा देंगे, इसलिए कहा तुम बाहर रहो, ब्रज में मत आओ, उधर में रहो, अयोध्या में रहो और शंकर जी भी बैल पर चढ़ करके यदि जाएंगे और सांप गले में यहां वहां रहेगा तो कृष्ण हमारा बच्चा डर जाएगा, इसलिए यशोदा मैया उनको कभी भी दर्शन नहीं कराएंगी, इसलिए गोपीश्वर होकर के ईश्वरी गोपी बन करके और तब जाते हैं और वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं, बड़ी रहस्यपूर्ण चीज है इसमें, इसलिए सबको छोड़ करके यदि एक आदमी राम की सेवा छोड़ करके कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो राम तो बिगड़ जाएंगे ना, खबरदार ऐसा मत सोचो, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं रामचंद्र जी, उनको अपने कृष्ण स्वरूप में ला करके गोपी बना करके सेवा लेते हैं। जनकपुर में राजकुमारियां थी, सीता जी की तो साथी राम के साथ में हो गई शादी, किंतु बाकी जितनी राजकुमारियां थी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जय प्रभो रामचंद्र जी के साथ में ही हमारी शादी हो, हम दूसरों के साथ में शादी नहीं करना चाहते। रामचंद्र जी ने मनी मन में आशीर्वाद दिया, देखो तुम्हारी मनोकामना मैं इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में मैं पूर्ण करूंगा, जब मैं कृष्ण हो करके आऊंगा तो तुम लोग गोपी के घर में जन्म लेगी और उस समय में हमारी तुम्हारी तुम हमारी प्रिया बनेगी। यहां तक कि सीता जी रामचंद्र जी अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्ण सीताएं स्थापन करते थे यज्ञ करने के लिए और अपने बाएं तरफ में रख करके यज्ञ करते थे, तो जबकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा यदि स्वयं भगवान वशिष्ठ और भगवान कर रहे हैं तो प्राण उसमें जरूर संचरित हो जाता था, वो कभी अब लोहे की और सोने की तरफ नहीं रहती, उसमें प्राण का संचार हो जाता था। तो इस तरह से जितने वर्ष तक उसके अंत में जीवित थे रामचंद्र जगत में प्रकटित थे, प्रति वर्ष सोने की सीता बनती थी, वो समस्त सीताओं में प्राण आ गया था। उन्होंने कहा जैसे अब तो आपको हमको साथ रखना पड़ेगा, हम तो आपके बिना रह नहीं सकती। उन्होंने कहा जी ठीक है, जब मैं कृष्ण हो रहा हूं थोड़े दिनों के बाद में, उस समय तुम लोग फिर से गोपी के घर में जन्म लेकर के और हमारी प्रिया बन करके रहोगे। इसलिए रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं तो अपनी सेवा में लगा देते हैं। इस तरह से यशोदा मैया ने प्रेम के साथ में उनको पकड़ लिया और बांधने लगी, बांधने का प्रयास किया। किसको बांध रही है? जिनका बाहर नहीं है भीतर नहीं है, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में है, उनका बाहर कहां से होगा? ये सब जगत के तो बाहर में है। अणुरापयाणियान महत्व अपमहियान, और वो महान से महान है और क्षुद्र से भी क्षुद्र है, उसको कोई नहीं बांध सकता, इसलिए बांध न सके। किंतु कृष्ण ने देखा जे मैया परेशान हो गई, ये पसीने के बूंदे टपक रही हैं और प्रतिज्ञा की है जब तक नहीं बांधूंगी तब तक खाना पीना नहीं करूंगी, चाहे एक वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष जीवन भर लगे मैं बांध करके रहूंगी। इसलिए जब ही इस प्रकाश की हा पसीने के बूंदे मोती की भांति टपकने लगी, उस समय कृष्ण को भीतर से दया गई, मेरी मैया को कष्ट हो रहा है, कृपया शीत सबंधने। तब उनकी कृपा शक्ति आने के साथ ही साथ में उसी केश के बंधन करने वाली रेशम की डोरी से ही वो बंध गए, और तो ये रस्सी से नहीं बंधे, कैसे बंधे? प्रेम से बढ़े। समय हो गया ना? बहुत काफी। तो इस तरह से प्रेम के द्वारा कृष्ण को बांधा जा सकता है। वह प्रेम सबसे उत्तम कौन सा है? गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिसके सब समय कृष्ण ऋणी बने रहते हैं, उनके अनुगत्य में यदि भजन किया जाए, हमको भी वैसे ही कृष्ण की सेवा मिले तो कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। यही सबसे भागवत का सबसे सार है, निगम कल्प तरुर्गलित अंग फलम इत्यादि में, न पा रहे हम निर्बद्ध संजुजा में। तो इस तरह से आप लोग भक्ति में बढ़े, यदि भगवान की कभी कृपा होगी तो फिर इसके बाद में जो रहस्य और जो चीजें हैं लीलाओं में मैं बतलाऊंगा। कल का एक दिन और है, कल कुछ राम के संबंध में हम बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोग और लोग भी आइए और जितना सवेरे तक हो सकेगा, 7 बजे 7:30 हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कथा आरंभ कर देंगे, 9 बजे तक होगी, इसलिए आप लोग जरूर पधारिए। गौर प्रेमानंदे।